प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 10 जुलाई 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने उन सभी मित्रों के प्रति जिन्होंने गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं मेरे पास भिजवाई हैं। बहुत लोगों ने आशीर्वाद की कामनाएं भिजवाई हैं। तो मित्रों मुझे नहीं मालूम कि मेरी हैसियत आशीर्वाद देने की है या नहीं है, लेकिन आप सबकी इन भावनाओं के प्रति पूरा पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सच पूछिए तो इस तरीके से आभार व्यक्त करना शायद आधा अधूरा होगा या आप लोगों को भी शायद थोड़ा सा अटपटा सा लगे कि कोई यदि आपने गुरु माना है तो गुरु आभार व्यक्त करे। तो मित्रों आज मैंने इसी विषय को अपने इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए चुना है और शायद जिस अंदाज में मैं बात करने जा रहा हूं उससे मैंने क्यों आभार व्यक्त किया है वह जस्टिफाइड भी हो जाए, वह तार्किक रूप से सत्य सिद्ध भी हो जाए और डेफिनेटली इससे जीवन के प्रति एक दृष्टि तो विकसित होगी ही। तो मित्रों आइए आज हम गुरु पूर्णिमा के बहाने, हालांकि गुरु पूर्णिमा कल था, गुरु पूर्णिमा के बहाने गुरु पर बात करते हैं। मित्रों इस पर बहुत सी बातें होती हैं, कल अखबारों में भी बहुत से लेख आए, चैनल्स पर भी इस पर प्रोग्राम थे और बहुत ही स्वाभाविक है कि ऐसा होता है क्योंकि जब भी कोई अवसर होता है तो हमारी जो मानसिकता है वो एक अलग तरह के पर्यावरण से घिर जाती है और फिर उस बीच में उस माहौल में उस पर्यावरण में अगर कोई बात कही जाए तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। जैसे बरसात हो रही है तो अब अगर बीज बोए जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से उग जाएंगे। तो काफी कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा सुना भी होगा, मेरी कोशिश है कि उनसे हटकर मैं थोड़ी सी कुछ बात कहने की कोशिश करूं, हालांकि हटकर है या नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन ये मेरे मन की बात जरूर है। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि दरअसल आप देखिए कि जब हम गुरु की बात करते हैं तो दो तीन तरह के गुरु हमारे बिल्कुल सामने आ जाते हैं और उन पर चर्चा भी होती है। एक तो वो गुरु होते हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं और हमारे वो शैक्षणिक गुरु हैं जिन्हें हम साहित्यिक भाषा में शिक्षक भी कहते हैं। दूसरे हमारे वे गुरु होते हैं जो हमें जीवन के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, हमें पालते पोसते हैं, माता पिता को हम अपना गुरु मानते हैं या वो गुरु जो हमें फिर और जीवन में आगे ले जाते हैं। जैसे जब आप अगर आप आईएएस में आ जाएंगे तो बहुत लोगों को मैंने देखा है, खुद भी महसूस किया है कि जिनके अंडर में आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जो आपको प्रशासन की सारी चीजें सिखाते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं हम प्रशासनिक गुरु मान लेते हैं कि प्रशासन करना हमने इनसे सीखा है। तो एक दूसरे तरह के ये गुरु हुए जो जीवन के बारे में हमें बताते हैं। जो तीसरे गुरु हैं जिन्हें भारतीय दर्शन में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है वह है हमारे आध्यात्मिक गुरु, यानी कि जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं या यूं कह लीजिए कि जो भगवान से हमारा परिचय कराते हैं, आध्यात्मिक गुरु। ये तीन तरह के मूल श्रेणियां हैं। मित्रों मुझे लगता है कि अगर इन तीनों को भी आप मिला दें और केवल ये जानने की कोशिश करें कि ये गुरु है क्या, यानी कि गुरुत्व क्या है, मैं भार वाली बात नहीं कर रहा हूं, गुरुत्वाकर्षण वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस गुरु की बात कर रहा हूं कि जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है या हमारे केंद्र में आ जाता है या कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक पर्याय सा बन जाता है, कहीं कभी जीवन का पर्याय इस मायने में बन जाता है कि हमें लगता है कि मैं अपना जीवन न जीकर अपने गुरु का जीवन जी रहा हूं, मैं उस जगत की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों जब इस पर मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि दरअसल जो गुरु है वो बेसिकली एक भाव है, गुरुत्व शब्द से मैं बच रहा हूं, वह एक इमोशन है, वह एक अनुभूति है, आप उसे महसूस करते हैं, दैट्स ऑल। गुरु मूलतः शरीर रूप में नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक शरीर है और मैं उसे गुरु मान लूं, जब वो आए पांव छूं, सम्मान करूं, अवसरों पर उन्हें याद कर लूं और बात खत्म हो जाए, देखिए, अगर कोई वाकई में कोई सौभाग्यशाली है और सशरीर उनके गुरु उपस्थित हैं, तो फिर हमें ये करना ही होता है कि हम करना ही चाहते हैं, अच्छा लगता है करने से। लेकिन इसी से बात नहीं बनती। जो महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है, वो भावना के स्तर पर है कि जिसे भी हमने गुरु माना है, चाहे वो सशरीर अभी मौजूद है नहीं है, या वो पत्थर की ही मूर्ति क्यों न हो, या वो फोटो के रूप में ही क्यों न हो, या हो ही ना, हमने केवल मान लिया है। आप मान लीजिए किसी को भी गुरु मान लीजिए जो हजारों साल पहले हुए हैं, आप रामानुजाचार्य जी को मान लीजिए, आप तुलसीदास जी को मान लीजिए, कबीर को मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, उनके प्रति जो हमारी भावना है, मूलतः वह गुरु है, या कह लीजिए गुरु भाव है, गुरु के प्रति जो भाव रखा जाना चाहिए वह है। और यदि वह भाव नहीं है तो इनफैक्ट फिर गुरु का कोई मतलब है नहीं। महाभारत में एक बहुत खूबसूरत कथा है, बड़ी छोटी सी है, उसे आप जानते भी होंगे। ये मित्रों, मैं दो चरित्र आपको बता रहा हूं, वो है अश्वत्थामा और एकलव्य। एकलव्य की कथा से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं कि कैसे उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर और उनके सामने धनुष विद्या का अभ्यास शुरू किया और वही उनके गुरु बन गए। लेकिन एक और भी चरित्र है अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। एक दिन अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य से यह प्रश्न किया था, कि मैं देख रहा हूं कि अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है, उसे आप जितने अच्छे तरीके से सिखाते हैं पढ़ाते हैं, आप मुझे उतने अच्छे से सिखाते पढ़ाते नहीं है, जबकि मैं आपका पुत्र हूं। आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? मतलब उसने नाराजगी से यह प्रश्न किया था, और बहुत स्वाभाविक है, हर पुत्र अपने पिता से यह प्रश्न कर सकता है अगर उसे ऐसा महसूस होता है तो। उस समय द्रोणाचार्य जी ने जो जवाब दिया था, मैं तो सच पूछे तो मैंने जो आज जिस पर मैं बात कर रहा हूं वो द्रोणाचार्य के ही जवाब की एक व्याख्या है। द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि दिक्कत यह है कि तुम मेरे पुत्र हो और मुझे गुरु बनाना चाहते हो, तो मैं ये देखता हूं कि तुम्हारे अंदर वो भाव ही नहीं है कि तुम मुझे गुरु समझ सको। तुम्हारे अंदर मुझे पिता समझने का भाव है। अर्जुन मुझे पूरी तरह से गुरु भाव से देखता है, तो वह मेरा ज्यादा अच्छा शिष्य हो सकता है, तुम उतने अच्छे शिष्य नहीं हो सकते। इसमें मैं कहीं नहीं हूं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है पुत्र, तुम अपने भाव को समझो, तुम मेरे प्रति गुरु का भाव ले आओ, सीख लो। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब हमें किसी से भी कुछ सीखने की बात आती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो गुरु से सीखने की बात हो, चाहे वो किताबों से सीखने की बात हो, चाहे वो आप स्मार्टफोन पर किसी का लेक्चर सुन रहे, कंप्यूटर पर कुछ सुन रहे, उसी से ही सीखने का भाव हो, किसी से भी सीखने का भाव हो, सीखने का जो काम है डेफिनेटली वो एक थोड़ा सा तार्किक काम है, लॉजिकल काम है, विचार प्रधान काम है, है ना। जब हम कुछ भी चीजें सीखते हैं उसमें विचारों की अहमियत होती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें विचार ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तर्क ही सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन इस तर्क को आत्मसात कैसे किया जाए, इसे सीखा कैसे जाए? मुझे लगता है दोस्तों की जो तर्क है वो एक तीर है, तो धनुष का काम करने वाला जो उपकरण है वह है भाव। यदि यह तर्क का तीर भाव के धनुष पर रखकर चलाया जाए तो उस तीर के अंदर तक उतर जाने की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाए। यानी कि भाव हमारे सीखने की पृष्ठभूमि तैयार करता है, वह जमीन तैयार करता है, और जब हम भावना के स्तर पर अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो अब जो हम सीख रहे हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना सीख रहे हो, तो हमारे जो सीखने की जो क्षमता है, जो गहराई है, जो आकर्षण है, वो कई कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आज भी ऐसा होता है कि हम लोगों को बचपन से यह सिखाया गया और आप लोगों को भी सिखाया गया होगा कि जो पुस्तकें हैं वो विद्या देवी है, देवी हमारे यहां ज्ञान की देवी सरस्वती को माना गया। तो यदि कभी पुस्तक आपके पैर से टकरा जाए तो छोड़िए, स्पर्श भी हो जाए, तो आप किताब हो, चाहे वो कॉपी हो, चाहे वो अखबार ही क्यों ना हो, आप उसे प्रणाम कीजिए, माथे से लगाइए और क्षमा मांगिए कि मैंने पैर से तुम्हें स्पर्श छू दिया। भले ही वो खुद आपके पैरों पर क्यों न गिरी हो, आप अलमारी से किताब निकाल रहे हैं या जा रहे थे, अचानक किताब आपके पैरों पर गिर गई, तो आपने कुछ नहीं किया, किताब आकर के आपके पैरों पर गिरी है, लेकिन क्षमा आपको मांगनी है, ये सम्मान देना है। ये बेसिकली ज्ञान के प्रति उपजा हमारा भाव है और कुछ नहीं है। किताब तो एक निर्जीव वस्तु है, और सवाल ये बात इसका है ही नहीं कि वो किताब किसकी है, वो कोई धर्म ग्रंथ है या फिर उपन्यास है। मैंने तो अखबार की बात कही, अभी भी पढ़ने के दौरान अगर कभी पैर मोड़ कर मैं पढ़ रहा हूं, एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाकर, और अखबार तो बड़ा लंबा होता है, फड़फड़ाहट से अगर मेरे उंगली से अखबार के पृष्ठ टकरा जाते हैं तो मैं उस अखबार को बकायदे माथे से लगाता हूं। अनजाने होता है, ये कोई जानबूझकर नहीं होता है, ये अनजाने हो जाता है, अपने आप हो जाता है, क्योंकि अवचेतन मन में वो भाव बन गया है। ज्ञान के प्रति जो भाव होना चाहिए वो बन गया है। तो मुझे तो लगता है कि यहां अखबार मेरे लिए गुरु है, जिस किताब को मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे लिए गुरु है, क्योंकि सीखने की भावना उसके प्रति है, सम्मान की भावना उसके प्रति है। मित्रों, मैं आपको एक अद्भुत बात बताऊंगा कि प्रेम पर मैंने इंडिपेंडेंटली किताब लिखी है, प्रेम पर बहुत सी लघु कथाएं लिखी हैं, और यह एक ऐसा तत्व है जिसे अनुभव तो हर कोई करता है, अंजाम किस रूप में कैसे दे पाता है वो बात अलग है, ये तो बहुत ही एक स्वाभाविक भाव है। और सच पूछे तो प्रेम वास्तव में क्या होता है, व्यावहारिक रूप में क्या होता है, मतलब एक विस्तृत संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, है ना, केवल आप रागात्मक प्रेम का मत लीजिएगा, लड़के और लड़कियों का प्रेम, मैं एक विस्तृत प्रेम की बात कर रहा हूं, वो क्या होता है, यह मैंने तब जाना जब हमारे यहां सन 2012 में एक प्राणी आया, और वो प्राणी मत समझिए कि कोई मेरा ग्रैंडसन आया, वो प्राणी था एक डॉगी जिसका नाम है कॉफी। जब वो छोटी सी कॉफी आई, जब वो 1.5 महीनों की थी और हमारे यहां उसको लाए, तब मैंने समझा कि प्यार यह होता है। उसके हाव भाव और उसकी क्रियाओं ने मुझे बताया कि यह व्यावहारिक प्रेम है, इसे देखो समझो। और फिर उसी कॉफी के प्रेम को लेकर के मैंने कई लेख लिखे जो अखबारों में छपे, वो अद्भुत रूप था प्रेम का। तो मेरे लिए तो कॉफी भी मेरी गुरु है, क्योंकि वह भाव है, उनसे मैंने सीखा है। तो मुझे लगता है मित्रों की जो गुरु भाव है, इसको हम सब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अपने अंदर कल्टीवेट करने की कोशिश करें, और जब इसका थोड़ा सा उदय हो जाएगा, जरा भी उदय हो गया, तो फिर आप देखिए कि सीखने के मामले में, समझने के मामले में, सोचने के मामले में, नया कुछ रचने के मामले में कितना कुछ चमत्कार हो जाता है। तो मित्रों, इसी के साथ ही मैं आप सबके प्रति एक बार फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और यह आभार केवल मेरी ओर से नहीं है बल्कि मेरी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से भी है, क्योंकि बहुत लोगों ने उनके प्रति भी अपना वही गुरु माता का भाव व्यक्त किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अब आज के इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।